हेलो स्टूडेंट,
आज दिनांक 20/4/2020 को मैं आपके पेपर BSH 1-2-1 के यूनिट 5 का जो दूसरा टॉपिक है लेटर गुप्ताज, उसकी चर्चा करूँगी। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका नाम लिखा हुआ लेटर गुप्ताज, तो अभी इसके पहले आपने गुप्त राजवंश के बारे में भी पढ़ा, तो आप किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखिए कि यह लेटर गुप्ताज जो है वो गुप्त राजवंश से संबंधित है। ये बिल्कुल नया राजवंश है जिन्होंने गुप्तों के बाद मगध पर शासन करने का काम किया, खासतौर से मगध और मालवा के आसपास इन लोगों ने शासन करने का काम किया। तो आप बिल्कुल ये इस बात को क्लियर रखिए कि ये जो उत्तर गुप्त राजवंश है या गुप्त साम्राज्य या गुप्त राजवंशों से कहीं भी संबंधित नहीं था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब गुप्तों का पतन हुआ, लगभग 550 ईस्वी के आसपास गुप्तों का साम्राज्य जो है वो छिन्न भिन्न होना शुरू होता है, और एक बार फिर आप देखते हैं कि जो उत्तर भारत की राजनीति है वहाँ पर पुनः आपको विकेंद्रीकरण की पोजीशन आपको दिखाई देने लगती है, मतलब अराजकता की स्थिति या अव्यवस्था की स्थिति आपको दिखाई देगी। और इसी समय कई ऐसे शासक थे जो स्थानीय सामंत के रूप में शासन कर रहे थे या स्थानीय शासक के रूप में शासन कर रहे थे, और इन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया। और ऐसे समय में आपको बहुत सारे छोटे छोटे राजवंशों का नाम मिलेगा जिन्होंने अपने आप को गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत न रखते हुए अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। और इसमें आपको मिलेंगे बल्लभी के मैत्रक, इसके साथ ही साथ मालवा में आपको यशोवर्मन या यशोधर्मन का रेफरेंस मिलेगा, कन्नौज में मौखलियों का रेफरेंस मिलेगा, और इसके साथ ही साथ मगध और मालवा में कुछ समय के लिए उत्तर गुप्त राजवंश ने भी शासन किया। तो आइए पहले हम देखते हैं कि यह उत्तर गुप्त राजवंश कहाँ शासन कर रहे थे, कि इनके शासक कहाँ शासन कर रहे थे, और इनके इतिहास को जानने का हमारे पास क्या प्रमुख स्रोत है, क्या सोर्सेज हैं जिससे हम इनके बारे में जान सकते हैं। अगर हम लोग उत्तर गुप्त वंश के बारे में सोर्सेज की चर्चा करें तो हमें दिखाई देता है कि बहुत सारे अभिलेख हैं जो हमें इनके बारे में बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे एक आपका है अफसरगढ़ का लेख। अफसरगढ़ का जो लेख है वह बिहार से मिला है, बिहार के गया में एक जगह है अफसर वहाँ से इसको प्राप्त किया गया है। और इसमें जब आप देखेंगे तो इसमें प्रथम शासक कृष्णगुप्त से लेकर के आदित्य सेन तक का जो इतिहास है उसमें उसकी जानकारी हमको इस लेख से मिलती है। इसके साथ ही साथ बिहार से ही एक और लेख मिला है, उसे कहते हैं हम लोग देवबरनार्क का लेख, या आपके आरा जिले के देवबरनार्क नामक स्थान से मिला है और इसीलिए इसको देवबरनार्क का लेख भी कहा जाता है। इसकी खोज कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1880 में किया, और इसीलिए इसको देवबरनार का लेख कहा जाता है। यह जीवित गुप्त सेकेंड का लेख है, उसी ने इसको उत्कीर्ण कराया था, और इसमें लगभग आप देखेंगे तो बाद के शासकों का रेफरेंस हमें मिलता है। अब आइए देखते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो अगर आप देखेंगे तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद मगध और मालवा में इस नवीन गुप्त वंश का उदय हुआ, और इनके बारे में या इनके स्टार्टिंग फेज का जो समय है, स्टार्टिंग का जो समय है, उसके बारे में हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। और ये पता चलता है कि संभवतः इतिहासकारों ने या जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उन लोगों ने गुप्त वंश से, चूंकि ये अलग लोग थे इसलिए इनको लेटर गुप्ता या उत्तर गुप्त वंश के रूप में इसको नामोल्लेखित किया, इसका नामकरण किया। जहाँ तक इनके शुरुआत के शासकों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि तीन जो इसके प्रारंभिक शासक हैं उन लोगों ने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण नहीं की, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं किसी के अधीन सामंत के रूप में शासन कर रहे थे। और इतिहासकार मानते हैं कि संभवतः ये लोग गुप्तों के अधीन ही सामंत थे, और जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और अपने आप को जनता के बीच लोकप्रिय करने के लिए भी अपने नाम के आगे ये गुप्त लगाने लगे, क्योंकि गुप्त साम्राज्य या गुप्त जो सम्राट थे वो लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध थे। अब जहाँ तक इनके मूल निवास स्थान का प्रश्न है तो यहाँ भी एक अलग डिबेट है, ठीक। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग मूलतः मालवा के निवासी थे, और इसमें आपके बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं जैसे डीसी गांगुली, आर के मुखर्जी, सी वी वैद्य, एच सी राय चौधरी, इन सब का मानना है कि इनका जो मूल स्थान था वो मालवा था। लेकिन बहुत सारे लोग, हालांकि उन्होंने अपने पक्ष में बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन इतिहासकार उसको नहीं मानते हैं। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनका जो मूल स्थान है वह मगध था, और ज़्यादातर लोग इसी बात को स्वीकार करते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जब हम उत्तर गुप्त वंश के कुछ शासकों की विक्ट्री पढ़ते हैं, अचीवमेंट्स पढ़ते हैं, तो उसमें हमको बंगाल की विजय और असम की विजय भी दिखाई देती है, जिसकी चर्चा मैं अभी आगे करूँगी। तो इतिहासकारों का मानना है कि अगर ये मालवा इनका मूल स्थान होता तो इन जगहों को डिफीट करने में इनको बहुत मुश्किल आती, और लगभग ये काफ़ी बड़ा एरिया जीत चुके होते, लेकिन ऐसा हमको रेफरेंस नहीं मिलता है। तो संभवतः ये मगध में ही मुख्य रूप से शासन कर रहे थे, और इसी वजह से जो बंगाल का क्षेत्र है और असम का क्षेत्र है उस पर विजय पाने में इनको सफलता मिली। तो आइए, तो फाइनली बहुत सारे लोगों ने इसी को एक्सेप्ट किया कि मगध ही उनका मूल स्थान था, और यहीं से वो अपनी विजय यात्रा को उन्होंने आरंभ करने का कार्य किया। अब आइए चलते हैं, हम लोग इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री देखते हैं। जो लेटर गुप्ताज हैं उनमें जो सबसे पहला शासक है उसका नाम मिलता है कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त ही इस वंश का संस्थापक था, जिसने 510 से लेकर के 525 टू 525 AD तक उसने शासन किया। अप्सरगढ़ लेक में उसके विजयों का रेफरेंस मिलता है, उसे कई शत्रुओं का विजेता कहा गया, असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उस लेख में उसके द्वारा पराजित शासकों के नाम नहीं मिलते हैं। इसके बाद जो दूसरा शासक है इस वंश का, उसका नाम है हर्षगुप्त। ठीक, हर्षगुप्त भी कृष्णगुप्त के बाद उत्तराधिकारी घोषित होता है, और हर्षगुप्त के समय एक ये हमको एक डिप्लोमेटिक रिलेशन दिखाई देता है मौखरियों के साथ। मौखरी जो वंश है ये कन्नौज में शासन कर रहे थे, लगभग गंगा यमुना का जो दोआब का क्षेत्र है यहाँ पर रूल कर रहे थे, और इनकी कैपिटल थी कन्नौज। तो इनके साथ एक वैवाहिक संबंध हर्षगुप्त ने इस्टैब्लिश किया, और अपनी बहन हर्षा गुप्ता का विवाह मौखरी नरेश आदित्य वर्मा के साथ संपन्न किया। इसके बाद हम देखते हैं कि लगभग काफ़ी बड़े एरिया पर इसने भी रूल करने का काम किया, और जब हम इसकी टाइटल देखते हैं अभिलेखों में तो इसकी टाइटल हमको क्षितिश चूड़ामणि दिखाई देती है। क्षितिश चूड़ामणि मीन्स जो राजाओं में भी बिल्कुल हेड हो, राजाओं में हेड हो, या राजाओं का जो सिरमौर हो। इसके साथ ही उसके जिस विजयों का रेफरेंस मिलता है उसमें समुद्र तट तक और हिमालय के शत्रुओं तक जीतने का रेफरेंस मिलता है। हालांकि ये बहुत सही नहीं कहा जा सकता, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हाइपरबोलिक है, और ऐसा लगता है कि उसकी विजयों का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया था। इसके बाद जो तीसरा शासक है उसका नाम है जीवित गुप्त। जीवित गुप्त भी इस वंश का तीसरा इम्पोर्टेंट शासक है, और इन तीनों राजाओं ने, यानी कृष्णगुप्त ने और हर्षगुप्त ने और जीवित गुप्त ने, लगभग 554 से लेके 554 या 555 AD तक रूल करने का काम किया, यानी 510 से लेकर के 555 AD तक इन लोगों ने रूल करने का काम किया। और ये माना जाता है कि ये अभी बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में इस्टेब्लिश नहीं हुए थे, कहीं ना कहीं फ्यूडल्स के रूप में ही अभी रूल कर रहे थे। इसके बाद चौथा रूलर है इस डायनेस्टी का, उसका नाम है कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त के बारे में माना जाता है कि वह ऐसा पहला शासक है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, या जीवित गुप्त का पुत्र था एंड ही गॉट द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। तो ऐसा लगता है कि अब जो ये गुप्त वंश के लोग थे इन्होंने अपने आप को सामंत की स्थिति से कहीं अधिक इंडिपेंडेंट रूप में इस्टेब्लिश कर लिया था, और फाइनली कुमारगुप्त गॉट द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। और अभी जो अफसरगढ़ का लेख है उसमें कुमारगुप्त की बहुत प्रशंसा की गई है, बहुत ही उसको वीर शासक के रूप में उसमें दिखाया गया है। इसके बाद कुमारगुप्त के बाद कुमारगुप्त का एक बहुत इम्पॉर्टेंट विक्ट्री जो ये लिखा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि इस समय एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभी तक जो कुमारगुप्त के पहले जो अर्ली तीन रूलर्स थे उनके समय में जो मौखरियों का रिलेशन था वो फ्रेंडली था, अभी तक मित्रतापूर्ण व्यवहार उनका चल रहा था, मित्रतापूर्ण संबंध चल रहा था। लेकिन कुमारगुप्त के समय मौखरियों का जो रिलेशन है वो मित्रता में न रह करके शत्रुता में कन्वर्ट हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि इस समय भी जो मौखरियों का राजा है उसका नाम है ईशान वर्मा, और वह भी बहुत महत्वाकांक्षी और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए लगभग लगा हुआ है। तो फाइनली ऐसे कंडीशन में दोनों के बीच जो मित्रता है वो शत्रुता में कन्वर्ट हो जाती है। और ऐसा रेफरेंस मिलता है कि ईशान वर्मा की महत्वाकांक्षा के कारण दोनों के बीच एक युद्ध भी होता है। और इस युद्ध में यह रेफरेंस मिलता है अफसरगढ़ में कि कुमारगुप्त विजयी रहता है। और इस विजय के बाद कुमारगुप्त का जो साम्राज्य है वह गंगा नदी के किनारे पश्चिम में प्रयाग तक विस्तृत हो जाता है। और इसके साथ ही साथ पुनः इसमें सूचना मिलती है इस लेख से कि कुमारगुप्त ने प्रयाग में अपने प्राणों का अंत किया। अब इस पर अलग डिबेट है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि संभवतः वह इस युद्ध में पराजित हो गया था और ग्लानिवश उसने प्रयाग में जाकर के अपनी आत्महत्या कर ली, लेकिन बहुत सारे विद्वान इस पर एकमत नहीं हैं। मैंने इससे संबंधित नोट्स भी आपको भेजा है, आप उसमें देखिएगा, उनके नाम दिए हुए हैं। जैसे बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि प्रयाग में इस तरह से जाकर के प्राण त्यागने की हमारी प्राचीन परंपरा थी और इसी परंपरा का पालन जो है कुमारगुप्त के द्वारा किया गया। तो अब ये बहुत कहना मुश्किल है कि वाकई में सच्चाई क्या थी, लेकिन इस पर भी इतिहासकारों में अलग 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 जो उनके मत हैं उसकी वजह से एक डिबेट बना हुआ है। कुमारगुप्त के बाद जो अगला शासक है उसका नाम है दामोदर गुप्त। और इस समय आप देखेंगे जिस समय दामोदर गुप्त गद्दी पर बैठता है उसी समय मौखरियों का जो शासक है वह है सर्व वर्मा। ठीक है, सर्व वर्मा के पिता ईशान वर्मा थे और जो कहीं ना कहीं कुमारगुप्त से पराजित हुए थे, जिसका रेफरेंस अभी मैंने आपको पहले बताया। तो कहीं ना कहीं जो अपने पिता की पराजय का बदला लेने के लिए सर्व वर्मा ने दामोदर गुप्त पर आक्रमण किया। और अफसरगढ़ में यह रेफरेंस मिलता है, जो भी इसमें लाइनें लिखी हुई हैं इससे फाइनली ये पता चलता है कि दामोदर गुप्त जो है पराजित हुआ। और इस युद्ध में दामोदर गुप्त पराजित हुआ और इस पराजय के बाद लगभग जो मगध का क्षेत्र है वह उत्तर गुप्तों के अधिकार से निकल गया और मौखरियों के हाथ में चला गया। और अब जो है उत्तर गुप्त केवल मालवा तक ही सीमित रह गए। तो मगध पर मौखरियों के आधिपत्य की सूचना हमको और अभिलेख से भी मिलती है, जैसे देव बर्नार्क लेख से भी ये पता चलता है कि अब मौखरी जो है वो मगध पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके थे और उत्तर गुप्त का साम्राज्य केवल मालवा तक ही सीमित रह गया था। ऐसा माना जाता है कि यह युद्ध लगभग 582 यानी 582 एडी के आसपास लड़ा गया था। जहाँ तक धर्म की बात है तो दामोदर गुप्त ब्राह्मण धर्म को पैट्रोनाइज करने वाला माना जाता है और उसको ऐसा अफसरगढ़ में दिखाया गया है कि उसने कई जो अग्रहार थे या जो ब्राह्मण मोनेस्ट्रीज थे, गांव थे, उनको डोनेशन देने का भी काम किया था। दामोदर गुप्त के बाद फिर एक रूलर आता है, उसका नाम है महासेन गुप्ता। दामोदर गुप्त के बाद उसका जो पुत्र है महासेन गुप्ता वह अगला शासक बनता है और यह भी एक वीर शासक था। और इसके बारे में जो अफसरगढ़ लेख में मिलता है उसमें ये मिलता है कि उसने असम के राजा सुस्थित वर्मन को परास्त किया था। ये सुस्थित वर्मन कौन है? ये सुस्थित वर्मन अगर देखेंगे तो हम हर्ष का रेफरेंस पढ़ेंगे, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके एक मित्र का रेफरेंस आता है, उसका नाम है भास्कर वर्मा। यह भास्कर वर्मा ये जो सुस्थित वर्मन है वो उसी भास्कर वर्मन का पिता है और इसी को परास्त करने का काम महासेन गुप्ता के द्वारा किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर महासेन गुप्ता की जो टाइटल है वह महाराजा धीराज नहीं मिलती है। और इसके पीछे इतिहासकार ये मानते हैं कि संभवतः इस समय महासेन गुप्ता ने मौखरी नरेशों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और मौखरी नरेश इस समय का जो मौखरी नरेश था वह था अवंती वर्मा। तो ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि संभवतः अवंती वर्मा की अधीनता महासेन गुप्त ने स्वीकार कर ली थी और इसीलिए हमको उसकी जो टाइटल है वो महाराजा धीराज नहीं मिलती है। और दूसरी तरफ हमको ये दिखाई देता है कि मौखरियों की जो बढ़ती हुई शक्ति है उसकी वजह से कहीं ना कहीं अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए महासेन गुप्ता ने पुष्यभूति वंश के साथ अपनी बहन का विवाह संपन्न किया। उसका भी नाम था महासेन गुप्ता। तो महासेन गुप्ता जो उसकी बहन थी उसका विवाह पुष्यभूति वंश में संपन्न किया ताकि वह मौखरियों के विरुद्ध अपने आप को सुरक्षित रख सके। महासेन गुप्त के समय की जो अंतिम अंतिम शासनकाल की जानकारी है वह हमको बहुत ही क्लियर नहीं मिल पाती, और ऐसा माना जाता है कि संभवतः उसके शासनकाल के अंतिम समय में कलचुरी नरेश शंकरगढ़ ने मालवा पे आक्रमण किया, और इसी आक्रमण का सामना करते हुए महासेन गुप्त की डेथ होती है। और क्योंकि हम इस क्रम में महासेन गुप्त के बाद जो अगले शासक का नाम देखते हैं वह है देवगुप्त। देवगुप्त महासेन गुप्त का पुत्र था, और वह फिर ऐसा रेफरेंस मिलता है कि जिस समय कलचुरी शासक के संघर्ष में लगे हुए थे उसी समय उसने अपने आप को मालवा में स्वतंत्र घोषित कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और भी आप ध्यान रखिएगा कि कलचुरी शासक ने आक्रमण तो किया लेकिन उनका जो साम्राज्य वो बहुत दिनों तक मालवा पे स्थायी नहीं रहा, और वह पुनः चालुक्यों के साथ जो है संघर्षरत होने लगे। तो ऐसे स्थिति में देवगुप्त ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए मालवा में अपना स्वतंत्र साम्राज्य पुनः स्थापित कर लिया। अब देखना ये है कि देवगुप्त था कौन। ठीक, तो हम जब मधुबन और बांसखेड़ा लेखों का रेफरेंस पाते हैं तो वहाँ पर हम देवगुप्त का नाम उल्लेख पाते हैं, और कई अभिलेखों में जो रेफरेंसेस मिले उसके आधार पर माना गया कि संभवतः महासेन का ये बड़ा पुत्र था और यह उसकी पहली पत्नी से उत्पन्न हुआ था। महासेन के दो और पुत्र थे जो दूसरी पत्नी से उत्पन्न हुए थे, उनका नाम था कुमारगुप्त और माधवगुप्त। ठीक, और चूँकि देवगुप्त बड़ा था तो इन दोनों ही भाइयों से बहुत ही ईर्ष्या करता था, और महासेन गुप्ता के अंतिम समय की व्यवस्था का फ़ायदा उठाते हुए उसने अपने आप को मालवा का राजा घोषित कर दिया। अब ऐसी स्थिति में अपने दोनों पुत्रों की सुरक्षा के लिए महासेन गुप्त ने उन्हें संभवतः पुष्यभूति दरबार में भेज दिया था, और इस समय प्रभाकर वर्धन वहाँ पर है, उसके पास अपने पुत्रों को उसने भेज दिया था। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें आपको। आप ध्यान दीजिए कि महासेन गुप्ता का जो बड़ा पुत्र है देवगुप्त, तो उसने गद्दी को हथिया लिया है, और जो उसके दो कज़िन भाई हैं, ठीक है, उनका नाम है कुमारगुप्त और माधवगुप्त, इनको महासेन गुप्त ने सुरक्षा की दृष्टि से पुष्यभूति वंश के दरबार में भेज दिया है। ठीक है, और इसी बीच महासेन गुप्ता की डेथ हो जाती है और देवगुप्त जो है मालवा पर अधिकार कर लेता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ दिक्कत आएगी इसको समझने में। अब देवगुप्त की कंडीशन क्या है? देवगुप्त की कंडीशन ये है कि मौखरियों के खिलाफ देवगुप्त ने बंगाल नरेश शशांक से मित्रता कर ली। ठीक है, क्योंकि महासेन गुप्ता और मौखरियों के बीच भी वैवाहिक संबंध स्थापित था, और देवगुप्त को ये लगता है कि कहीं मैंने गद्दी हथिया ली है तो पुष्यभूति वंश मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दे, तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उसने क्या किया, बंगाल नरेश या गौड़ नरेश शशांक के साथ मित्रता कर ली, और उसकी सहायता से मौखरी वंश का एक नरेश है ग्रह वर्मा की भी हत्या कर देता है। अब यह ग्रह वर्मा कौन है, अगर आप ध्यान देंगे तो ग्रह वर्मा हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का पति है, यानी वर्धन वंश ने मौखरियों के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, और ग्रह वर्मा राज्यश्री का पति था जिसकी हत्या बंगाल नरेश शशांक की मदद से देवगुप्त ने की। और इसका डिटेल जब भी आप पढ़ेंगे, तो जब आप अगले सेमेस्टर में जाएंगे जब आप हर्षवर्धन को पढ़ेंगे तो उसमें आप इस सबको डिटेल पढ़ेंगे। तो इस प्रकार जो देवगुप्त है उसने कहीं ना कहीं एक प्रकार से मौखरियों के नरेश ग्रहवर्मा की हत्या करके वर्धन वंश से शत्रुता मोल ले लिया था। ठीक है, अब उसकी चर्चा हम लोग हर्षवर्धन के चैप्टर में करेंगे। फाइनली फिर आप देखते हैं कि हर्षवर्धन एक सेना लेकर के आक्रमण करता है और फिर देवगुप्त को ख़त्म करता है, देवगुप्त को मार डालता है, ये बाद में हम लोग देखेंगे। अब देवगुप्त के बाद जो अगला शासक है वह है माधवगुप्त, और माधवगुप्त जो है अगर आप देखिए तो इस समय तक माधवगुप्त जो है हर्षवर्धन के अधीन सामंत के रूप में शासन करता है। तो इस समय आप देखेंगे कि उत्तर भारत में खासतौर से थानेश्वर और कन्नौज के आसपास हर्षवर्धन का राज्य स्थापित हो जाता है, और हर्षवर्धन उत्तर भारत की बिखरी हुई शक्तियों को पुनः जो है एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है। तो माधवगुप्त उसके सामंत के रूप में शासन करता रहता है और उसका मित्र बना रहता है, और लगभग हर्ष के मृत्यु तक यानी 647 AD तक वह मगध में सामंत के रूप में ही शासन करता रहता है। और इसके बाद पुनः फिर आप देखते हैं कि हर्ष की मृत्यु के बाद अराजकता फैलती है और फिर उसने फिर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और स्वतंत्रतापूर्वक शासन किया। अब आइए देखते हैं माधवगुप्त के बाद जो अगला शासक है उसका नाम है आदित्य सेन। आदित्य सेन अगर आप देखिए तो आदित्य सेन माधव गुप्त का पुत्र है और इस समय तक जो है उसने अपने आप को मगध तक विस्तृत कर लिया, मगध तक अपना विस्तार कर लिया है और इसके साथ ही साथ वह एक बहुत बड़ा योद्धा है, कुशल प्रशासक भी है। उसके बारे में कई अभिलेख हैं जो मगध पर उसके आधिपत्य की सूचना देते हैं, जैसे अफसरगढ़ और शाहपुर के लेख, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक मंदर पर्वत का भी लेख है जो उसके अधिकार की सूचना देता है। इन विजयों के बाद ही उसकी जो उपाधि है वह हमें मिलती है परम भट्टारक महाराजा धीराज, ठीक है। उसने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और अफसरगढ़ लेख और मंदर लेख ये सभी उसकी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियों की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी तक आपने जितने भी शासक पढ़े उनके सभी के पीछे गुप्त लिखा हुआ है, लेकिन यह जो शासक है उसके आगे सेन लिखा हुआ है यानी आदित्य सेन। तो प्रायः हम देखते हैं कि सेन बंगाल के नरेशों की टाइटल होती है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आदित्य सेन जो है उत्तर गुप्त वंश का शासक है, इस पर आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और ऐसा लेखों से पता चलता है कि उसने 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने का श्रेय भी लेखों से प्राप्त होता है। जहाँ तक उसकी विजयों का रेफरेंस है तो उसके विजयों में ये लिखा है कि आदित्य सेन ने चोल राजवंश की विजय की थी। अब आप देखिए मगध कहाँ है और चोलों का राज्य कहाँ पर है, ठीक। तो चोल बिल्कुल दक्षिण में है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये विजय है उसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन लेखों में किया गया है। बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि हो सकता है वह चोल राज्य की यात्रा पर गया हो और जहाँ पर उसका स्वागत लोगों ने बहुत ही अच्छे से किया हो, वहाँ के राजाओं ने उसको उपहार आदि प्रदान किए हों, तो कहीं ना कहीं जो चोलों की विक्ट्री का रेफरेंस लेखों में मिलता है वो बहुत ही क्लियर नहीं हो पाता है। इसके साथ ही साथ यह भी रेफरेंस मिलता है कि उसने पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी और ब्रह्मपुत्र नदी तक अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और पश्चिम की तरफ जो उत्तर प्रदेश का आगरा है और अवध का जो एरिया है उसके साम्राज्य के अंतर्गत सम्मिलित था। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो हर्ष की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक बड़े साम्राज्य को स्थापित करने वाला जो शासक है वह आदित्य सेन था। और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसने जो गुप्त सम्राट है उनकी परंपराओं का पालन किया और एक बड़े भूभाग पर शासन करने का काम किया। उसके समय में हमको कुछ विदेशी राजदूतों के आने का भी रेफरेंस मिलता है, जैसे ऐसा रेफरेंस मिलता है कि उसके शासनकाल में, उसका शासनकाल लगभग आप देखेंगे तो 655 या 50 कहीं के 50 भी लिखा होगा, 650 या 55 से लेकर 675 ईस्वी तक उसका शासनकाल माना जाता है। तो ऐसा रेफरेंस मिलता है कि उसके शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुवेन से, ठीक, वांग हुवेन से TSE, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन है से, ने 2 बार भारत की यात्रा की। वांग हुवेन से ने 2 बार भारत की यात्रा की और आदित्य सेन ने उसको बहुत वेलकम करने का काम किया। इसके अलावा ऐसा भी रेफरेंस मिलता है कि उसने एक बोधगया में बौद्ध मंदिर बनवाने का काम किया था, ठीक है। अब जहाँ तक उसकी हम उपाधि देखते हैं तो हमको लेखों में जो उसकी उपाधि है वह परम भागवत मिलती है, जैसे देवबरनार्क लेख में आप देखेंगे तो उसकी जो उपाधि है वह परम भागवत मिलती है। तो इससे क्या क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण धर्म में विश्वास करने वाला था और वैष्णविज्म में वो बिलीव करता था। और आपको ध्यान होगा कि गुप्त सम्राट भी प्रायः इस प्रकार की उपाधि धारण करते थे, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसने गुप्तों की परंपरा का पालन किया। अफसरगढ़ लेख में ये भी पता चलता है कि उसने एक विष्णु मंदिर को निर्मित भी करवाने का काम किया, ठीक है। तो प्राचीन शासकों की तरह यद्यपि वह वैष्णव था लेकिन उसने सभी धर्मों को पैट्रोनाइज करने का काम किया, सभी धर्मों को संरक्षण देने का कार्य किया। तो इस प्रकार आदित्य सेन इस वंश का इम्पोर्टेंट शासक है और उसको आप थोड़ा तैयार करने का काम करिएगा। अब आदित्य सेन के बाद हम देखते हैं कि उसका जो पुत्र है और उसका जो उत्तराधिकारी है वह है देवगुप्त सेकेंड शासक बनता है। और आदित्य सेन के पश्चात ही कहीं न कहीं जो उत्तर गुप्तों का पतन होना शुरू होता है। देवगुप्त द्वितीय के बारे में भी हम देखते हैं कि इसने भी परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और इसके बाद उसके जो शासकों उसके उसके बाद के जो शासक हैं उनमें जो जिनका नाम है वह है विष्णुगुप्त और है जीवितगुप्त सेकेंड, यानी आदित्य सेन के बाद देवगुप्त शासक बना, देवगुप्त के बाद विष्णुगुप्त और फिर जीवितगुप्त द्वितीय। इन दोनों के लिए भी जो उपाधि है वह मिलती है परम भट्टारक महाराजा धीराज। लेकिन इन शासकों के समय की क्या राजनीतिक उपलब्धि रही या इन लोगों ने किन किन एरिया को ऑक्युपाई करने का काम किया या किसी राज्य के साथ इनके क्या रिलेशन थे, इसके बारे में कोई भी प्रकाश हम लोगों के सामने किसी भी सोर्सेज से उपलब्ध नहीं हो पाता। और ऐसा माना जाता है कि लगभग जीवितगुप्त द्वितीय जो है इस वंश का अंतिम महान शासक था, और जीवितगुप्त और विष्णुगुप्त दोनों ने ही आदित्य सेन के द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य को सुरक्षित रखने का और उस पर शासन करने का कार्य किया। इसके बाद कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जीवितगुप्त द्वितीय का अंत कन्नौज नरेश यशोवर्मन के द्वारा किया गया, और यशोवर्मन ने ही पूर्वी मालवा पर आक्रमण कर मगध के इस शासक की हत्या की, और मगध के इस शासक की पहचान जीवितगुप्त के साथ इतिहासकार वीपी सिन्हा ने की है। तो बहुत संभव है कि इस समय चूंकि मालवा में यशोवर्मन का उदय हो चुका था तो उससे जीवितगुप्त की उसके साथ जीवितगुप्त का कोई संघर्ष हुआ हो और फाइनली उसकी उसमें डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो जीवितगुप्त के साथ ही जो उत्तर गुप्त वंश है उसके उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है और फिर मगध साम्राज्य से इनका अंत शुरू हो जाता है, और इसके बाद फिर पुनः अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति प्रारंभ हो जाती है। जहाँ तक सांस्कृतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर गुप्त वंश का महत्वपूर्ण योगदान ये है कि इन्होंने प्रायः गुप्तों की ही परंपराओं का पालन करने का काम किया, और राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो इनका महत्वपूर्ण योगदान ये है कि इन्होंने कुछ समय के लिए ही सही लेकिन अपने सामंत की स्थिति से ऊपर उठ करके पुनः इन्होंने मगध साम्राज्य को एक केंद्रीकृत स्वरूप प्रदान करने का काम किया, और साथ ही साथ कुछ समय के लिए सार्वभौम शासक के रूप में यहाँ पर शासन अपना स्थापित किया। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं जो उनका शासनकाल है वो गुप्तों की परंपराओं और गुप्तों की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला ही कहा जा सकता है। स्टूडेंट्स प्रायः आप देखें तो इसमें से बहुत लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी दो नंबर के क्वेश्चन के लिए यह चैप्टर आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप कुछ कुछ शासकों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा इसको, और उस पर भी अपने मटेरियल को तैयार रखिएगा, जैसे कि दामोदर गुप्त, देवगुप्त, कुमार गुप्त, ठीक है, और आदित्य सेन, तो इनको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा इस वंश की कंसाइज हिस्ट्री बता दूं, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि इनका जो उदय है वह मगध और मालवा के आसपास हुआ, मगध से इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। सोर्सेज में आपके देवगढ़ और सॉरी अफसरगढ़ का लेख और देवबरनार का लेख है, ठीक है। और इसके बाद इनकी जो प्रारंभिक शासक हैं उसमें सबसे संस्थापक जो शासक है वह कृष्णगुप्त, उसके बाद जो शासक का नाम मिलता है वह है हर्षगुप्त, जीवितगुप्त, कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्ता, देवगुप्त, ठीक, और फिर माधवगुप्त, आदित्य सेन, और इसके बाद देवगुप्त सेकेंड, विष्णुगुप्त और जीवितगुप्त सेकेंड, और इसके बाद ही फिर इस साम्राज्य का अंत होता है और पुनः उत्तर भारत में नवीन साम्राज्य का उदय होता है। तो स्टूडेंट्स और मुझे लगता है कि यह ऑडियो आपको काफ़ी यूज़फुल होगा, और आप जो मैंने आपको मटेरियल भेजा है उसकी सहायता से आप इसको अच्छी तरह से तैयार करने में सफल रहेंगे।